ये 53 नंबर का श्लोक है। 53 नंबर के श्लोक में ये कहते हैं कि वस्तुतः मैंने यथार्थ रूप से यदि वस्तु की उत्पत्ति हो तो बाद संभव नहीं है। अज्ञान से वस्तु उत्पन्न होती है इसलिए उसका बाद संभव है। लेकिन अज्ञान से उत्पन्न होने वाली वस्तु का बाद तब तक संभव नहीं है जब तक ज्ञान न हो जाए। किसका ज्ञान? तो सृष्टा का ज्ञान, दृष्टा का ज्ञान, वो जब तक न हो जाए तब तक सृष्टि के प्रति आकर्षण समाप्त नहीं हो सकता है। अभी हम स्वामी अखंडन जी महाराज को श्रवण कर रहे थे जब मैं अंदर घुसा, वो एक बात कह रहे थे कि भागवत में भी खूब वेदांत है जितना आचार्य शंकर का है। तो मैं नीचे देख रहा था उस समय, जब ऊपर आया तो मैं भी सोच रहा था ऊपर क्या बोलना है। तो मैं भागवत देख रहा था इस प्रसंग के विषय में, तो भागवत के सप्तम स्कंद के छठे अध्याय के 13वें श्लोक में प्रहलाद जी महाराज असुर बालकों के साथ में बैठे हुए हैं और असुर बालकों के साथ में संवाद करते हैं। सारा जो संसार है वो सुख की तलाश में है, सुख की खोज में है। और प्रकृति ने उसको सुख बता दिया, तो प्रकृति ने जो सुख बताया वो मनुष्य को नहीं बताया, प्राणी मात्र को प्रकृति ने सुख बताया। और प्राणी मात्र को प्रकृति ने जिस प्रकार से सुख बताया उस तरफ प्राणी मात्र की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं जानता हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप घर में जाकर के श्लोक देखें और उसको पढ़ें थोड़ा सा, क्योंकि भागवत सुन सुन के तुम्हारे कान पड़ चुके हैं। सप्तम स्कंद के छठे अध्याय का 13वें श्लोक में प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं प्रकृति ने आदमी को इशारा किया, जिस चीज को तू ढूंढ रहा है अथवा प्राणी मात्र का जो संघर्ष है जिस सुख के लिए, वो भागवत में लिखते हैं औपस्त जैव्य बहुमन्यमान, क्योंकि प्रकृति मैंने आपको बताया था वाचस्पति मिश्र ने लिखा है अनिल वाच्या विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो, उस समर्थ परमात्मा की जो सेक्रेटरी है वो कौन है? माया है। अच्छा, अब वो सेक्रेटरी को काम सौंपा है संसार को अच्छी तरह से चलाने के लिए। सेक्रेटरी क्यों रखते हैं? आश्रम उजाड़ने के लिए? अच्छी तरह चले इसीलिए रखते हो ना, उसने बोला अच्छी तरह रखो। अब प्रकृति ने विचार किया कि ये संसार अच्छी तरह से तभी चलेगा जब इस नालायक को ये लगेगा कि यहां सुख है। हां, क्योंकि देखो दुख से भगाने के लिए किसी को कोशिश नहीं करनी पड़ती महाराज, दुख से आदमी अपने आप भाग जाता है। सुख से भागने के लिए तो कोई बुद्ध चाहिए, सुख से भागने के लिए कोई महावीर चाहिए और सुख से भागने के लिए कोई मीरा चाहिए। महावीर बुद्ध और मीरा का समाज नहीं होता, ये तो कोई एक व्यक्ति विशेष होते हैं। एक बारी की बात बता रहा हूं आपको, मैं प्रेम कुटीर में कथा करता था उस समय, तो त्यागमूर्ति जी महाराज ऊपर ठहरे थे, तो उनका नियम था वो जब घूमने के लिए जाते थे तो मैं जिस कमरे में मैं लेटता था उसी कमरे से होके जाते थे डेली, वो आते भी उसी से था। तो मेरे को बोलते थे अरे फक्कड़ आज तो हमारे साथ में भोजन कर लेना। मैं कहता ठीक है महाराज जी। तो बाद में एक दिन की बात है, मेरे को बोला आज कहीं बिरला मातुश्री में भजन का प्रोग्राम रखा है, चलोगे शाम को? तो मैंने कहा तो बड़े लोगों के साथ जाना ठीक नहीं है, महात्मा कहते हैं बड़ों के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी कभी चलना नहीं भूलते। हमने कहा महाराज हम तो नहीं जाएंगे, हमको सुबह प्रवचन करना है, क्योंकि शास्त्र और शस्त्र ये कभी किसी के बस में नहीं होते हैं। इसको कांदीवली वाले महाराज को हमने देखा, महाराज जी के पास आप कभी भी जाओ, चाहे आप सुबह 5 बजे चले जाओ, उठ जाएं यदि वो 4 बजे, तो कुछ लिखते हुए मिलेंगे, क्योंकि शास्त्र कभी किसी के बस में नहीं होते। ये है, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो महाराज जी दूसरे दिन मेरे को भोजन के लिए बुलाए ऊपर प्रेम कुटीर में, मेरे को बोला बहुत अच्छा किया तुम गए नहीं। अब मैंने कहा क्यों? अब वो माई जो कबीर का और मीरा का भजन गा रही थी ऊपर से, तो कहे मैंने जग लागे खारो, और तीन बीच बीच में जो है इतना श्रृंगार करके आए। जिसको इतना गहन देह अध्यास हो और वो देह अध्यास से ऊपर की बात करे तो बात कुछ समझ में नहीं आती। जे नर आचरही ते न घनेरे, आचरण में लाओ, ऐसे लोग बहुत नहीं होते, बहुत कम होते हैं। तो प्रकृति ने सोचा कि ये मेरा, क्योंकि परमात्मा ने प्रकृति को नियुक्ति ही किया है कि संसार में यह जीव उलझा रहे, फंसा रहे, और फंसेगा कब? जब कुछ सुख होगा। अब सुख होगा नहीं, सुख दिखना चाहिए उसको, होने की बात मत करो। अभी वो मछुआरा जो मछली को मारता है, मछली को सुख होता है कि नहीं होता है आप जानते हो, लेकिन सुख उसको दिखता है इसलिए वो फंसती है। तो संसार में जो सारा सुख है, मैं भागवत का आप देखना है श्लोक, ऐसा श्लोक पूरी भागवत में आपको नहीं मिलेगा जो उन्होंने दृष्टांत और सिद्धांत समझाया है। उसमें लिखा उन्होंने त्यजेत कोष कृत बद इब यह माना। ये श्लोक के अंदर प्रहलाद जी महाराज उन असुर बालकों को दृष्टांत दे रहे हैं, हे बालकों प्रकृति ने ये दिखाया प्राणी मात्र को, मनुष्य को नहीं, क्योंकि प्रकृति को तो प्राणी मात्र को चलाना है। जो प्रकृति है उसको हमसे भी उतना ही प्रेम है जितना गधे से है। तो उसने सुख कहां दिखाया? क्योंकि प्रकृति एक ही फॉर्मूला बनाती है सबके लिए, तो प्रकृति ने सुख कहां दिखाया? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं औपस्त्य जैव्यम। प्रकृति ने कहा दो ही जगह सुख है, एक तो जीभा में और एक उपस्थ मैंने काम वासना में। बहुमन्य माना प्राणी मात्र का यह निश्चय है कि उपस्थ और जीभा में ही सुख है। अब क्या हो गया इससे, परमात्मा के प्रति, परमात्मा के अस्तित्व के प्रति संशय हो गया। उसको बोलते हैं हमारे भाषा में, आपकी भाषा में, असत्वापादक। परमात्मा है ही नहीं। जो उपस्थ और जीभा में ही सुख समझेगा उस व्यक्ति को परमात्मा के अस्तित्व के प्रति संशय हो जाएगा। तो ये असत्वापादक जो है इसकी निवृत्ति के लिए क्या है उपाय, श्रवण। पहले असत्वापादक की निवृत्ति जो होगी वो श्रवण से होगी। क्या श्रवण से, तो श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्य। भाष्यकार भगवान लिखते हैं असत्व जब आप श्रवण करेंगे किसी महापुरुष के द्वारा, किसी त्यागी के द्वारा, तो आपके जीवन में एक घटना घटित होगी कि आपको लगेगा कि उपस्थ और जीवा के अलावा भी कोई सुख है। बुद्ध ने क्या छोड़ा, आप कभी यशोधरा पढ़ना, बुद्ध की पत्नी बहुत खूबसूरत थी, स्वभाव भी उसका बहुत अच्छा था, रूप और स्वभाव, रूप अत्यंत उत्तम हो और स्वभाव अत्यंत श्रेष्ठ हो, उसका त्याग आप तभी कर सकते हो जब आपके अंदर बोध हो, अथवा आपके अंदर यह निश्चय हो जाए कि इसके अलावा कोई सुख है। तो प्रकृति ने तो प्राणी मात्र को दिखा दिया सुख, कहां दिखाया, इसलिए जो कभी कभी आप पढ़ते हैं कि आहार निंद्रा भयमैथुनंच सामान्यमेतत, आपको श्लोक सही लगता है क्या, आप लोग पढ़ते हो विचार करते हो कभी, पशु में काम का सुख है क्या, बिल्कुल नहीं। एक शेर रहेगा ना, वो दूसरा शेर जो है ना काम का सुख नहीं ले सकता है, मार देगा वो दूसरों को। वो एक ही अपनी वासना की पूर्ति करता है, दूसरे अपनी वासना की पूर्ति नहीं कर सकते। चाहे शेर को देख लो, चाहे कुत्तों को देख लो, चाहे सामान्य बोलने की बात है ये, उनके अंदर भी काम के लिए कितना संघर्ष है, एक दूसरे के प्राणों को मार देते हैं, वहां भी कहां सुख है। खाने में भी ऐसा ही है, कभी देखो जा खाने के लिए कितना संघर्ष है उधर। तो प्रकृति ने तो बता दिया। अब ये यहां प्रहलाद जी महाराज ने जो बात कही, भले ही वो भोग नहीं कर पाते हैं और खा नहीं पाते हैं, लेकिन उनके दिमाग के अंदर एक ही चीज घुसी हुई है कि सुख यही है। वो उसके अलावा किसी दूसरे सुख की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तब आपको शास्त्र सुनने को मिलता है। मैंने कभी आपको शास्त्र का अर्थ बताया कि शास्त्र का अर्थ होता है अज्ञात ज्ञापक वो परमात्मा का राज है। अब वो परमात्मा का राज परमात्मा ने बताया कि शास्त्र ने बताया कि नहीं, उपस्थ और जीवा के अलावा भी कहीं और सुख है। बस ये क्या है, अज्ञात ज्ञापक। प्रकृति ने जो बताया वो शास्त्र नहीं है, वो अनुवाद है। लेकिन शास्त्र ने जो बताया वो अज्ञात का ज्ञापन कराया। शास्त्र ने एक राज खोला, श्रुतियों ने एक राज खोला, क्योंकि तुम्हारे होने का राज कौन खोलता है? तुम्हारे होने का राज खोलती हैं तुम्हारी सांसें। निःश्वसितम् अस्य भेदा, इसलिए वेद को बोलते हैं शास्त्र। अज्ञात का ज्ञापक, उसने तुम्हें बताया कि नहीं, इसके अलावा भी कहीं सुख है। उस सुख की प्राप्ति कैसे होगी फिर? तो उस सुख की प्राप्ति तब होगी जब इस सुख को आप छोड़ोगे नहीं, लेकिन इस सुख से ऊपर उठोगे। देखो, शब्दों का प्रयोग देखना उपनिषद के। याज्ञवल्क्य का शब्द है बृहदारण्य का, उद्यस्यन्वा अस्मात् स्थानात् मैत्री। मैं बहुत सारे समय आपको इशारा भी करता हूं, लेकिन आपने भी कसम खाई है कि हम समझेंगे नहीं। वो कहता है कि हे मैत्री, मैं इस गृहस्थ आश्रम से ऊपर उठना चाहता हूं। देखो, छोड़ना चाहता हूं अलग बात है, और ऊपर उठना चाहता हूं अलग बात है। जैसे एक लड़का फेल हो जाए, अब वो क्लास छोड़ दे, और एक लड़का फर्स्ट क्लास पास हो जाए जिसने पूरी पुस्तक तैयार करके रखी है, अब उस व्यक्ति को उस पुस्तक में कुछ दिखता? उस व्यक्ति के लिए वो पुस्तक व्यर्थ हो गई, क्योंकि वो पुस्तक उस व्यक्ति के लिए व्यर्थ हो गई क्योंकि उस व्यक्ति ने उस पुस्तक का अनुभव ले लिया। जिस चीज का आप अनुभव ले लेते हो वो चीज आपके लिए व्यर्थ हो जाती है। इसलिए याज्ञवल्क्य कहता है, उद्देश्यन वा हे मैत्री, मैं इस गृहस्थ आश्रम से ऊपर उठना चाहता हूं। क्यों ऊपर उठना चाहता हूं? क्योंकि अभी मेरे लिए गृहस्थ आश्रम में जाने ने लायक कुछ बचा नहीं है, और जहां आपको जानने लायक और पाने लायक कुछ बचा रहे और फिर आप उसको छोड़ दें, तो छोड़ने के बाद फिर आप उसका चिंतन करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, अब प्रकृति ने तो बता दिया उसको, फिर प्रहलाद जी को असुर बालकों ने कहा, इसमें तुमने कौन सी बहुत बड़ी बात बता दी भाई? उसने कहा, बात तुम्हारे को बता रहा हूं मैं, देखना श्लोक, जरूर देखना आज आप घर में जाकर के। वो लिखते हैं, तेजेत कोशकृद इव, कोश बोलते हैं संस्कृत में रेशम के कीड़े के लिए। हे बालकों, जब आदमी यह निश्चय कर लेता है कि उपस्थ और जीभा में ही सुख है, तब वो रेशम के कीड़े की तरह अपने चारों तरफ एक जाल बुनता है। देखो, मनुष्य की विशेषता क्या है मालूम है आपको? शास्त्रों में लिखा है, मनुष्य की विशेषता ये नहीं है कि वो सृष्टि में उलझ जाए। मैंने शायद कभी आपको एक बात बताई थी, बहुत पहले की बात है, मैं उस समय बनारस में पढ़ता था शायद। करपात्री जी महाराज एक बड़े विद्वान संत हो गए हमारे समाज के। महाराज करपात्री के पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा महाराज विज्ञान चांद पे पहुंच गया अभी वैज्ञानिक लोग, तो देखिए बोलते हैं चांद ऐसा है। महाराज जी इतने सरल थे, आप लोगों ने दर्शन नहीं किए उनके। महाराज जी ने एक बात कही बड़ी अच्छी, अरे नारायण जिसने चांद बनाया उसकी तरफ तो कभी ख्याल तुम्हारा गया ही नहीं है, बताइए। इतनी सुंदर सृष्टि जिसने बनाई वो सृष्टा कैसे होगा। और तीसरी बात ये है जो आपको यहां आगे बढ़ाएगी, वो बात ये है यदि उपस्थ और जीवा में सुख है इनसे सुखी कौन होता है। बड़ी बात तो ये, वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, वस्तु जिसके लिए है वो महत्वपूर्ण है। देखो प्रकृति तुमको उलझाती जरूर है लेकिन परमात्मा की तरफ जाने से रोकती नहीं है। आखिरकार ये इन दो सुख, ये जो दो सुख हैं ये किसके लिए हैं। और जिसके लिए ये सुख हैं वो जड़ है कि चेतन है। यहीं से जीवन में सत्य की जिज्ञासा का सूत्रपात होता है। तुम लाख सुनते रहो सत्य की जिज्ञासा का सूत्रपात आपके जीवन में तब तक नहीं हो सकता, आप इसको भी स्वीकार करो उपस्थ और जीवा का सुख, लेकिन ये सुख किसके लिए हैं। जब आपके जीवन में ये बात बैठ जाती है तब आप जड़ से चेतन की तरफ बढ़ने लगते हैं, उसी का नाम विचार है बस। और उस विचार के लिए पहला जो उपाय है, चलो अब सुन लीजिए उसको, बात समझ में आई आपके। तो कोषकार का जो दृष्टांत दिया तो कोषकार का मैंने रेशम का कीड़ा, क्योंकि फिर ये अपने चारों तरफ केवल अर्थ और काम की व्यवस्था करता है। और अर्थ और काम की व्यवस्था कोई नासमझी के कारण नहीं करता, बहुत गहरी समझदारी के कारण करता है, क्योंकि प्रकृति ने जो उसके कान में मंत्र दिया था कि इसमें सुख है, इसलिए उसने चारों तरफ अपने सुख की व्यवस्था कर ली। इसलिए असामान्य व्यक्ति सृष्टि का प्राणी वो ये इन दो के अलावा तीसरी चीज सोच नहीं सकता है। अर्थ भी किसके लिए है, बस दो ही चीजों के लिए है, सब कुछ और क्या है। तब श्रुति ने उसको कहा इसके अलावा जो है, क्योंकि सृष्टि शब्द जो है ना वो सापेक्ष है। क्या है सापेक्ष? सापेक्ष का मतलब किसी न किसी सृष्टा की स्मृति दिला देता है। वो स्वयं में निरपेक्ष, सृष्टि स्वयं में निरपेक्ष नहीं हो सकती। यदि बनी है, और मैंने तो कई बार आपको दृष्टांत दिया, देखो बनाने वाले ने भी हमारा शरीर कैसा बनाया, मैंने बताया प्रेमपुरी की छत पे आप खड़े हो जाओ सुबह से शाम तक, 10 इंच यदि बारिश हो और तुम खड़े रहो तुम्हारी नाक के अंदर पानी नहीं जा सकता। खड़े रह के देखना जरा, अब बताओ नक्शा बनाने वाले ने कैसा नक्शा बनाया है देख लीजिए आप। तुम प्रेमपुरी वालों ने लाखों रुपया लगा दिया पांचवें माले के ऊपर उसको बंद करने के लिए, फिर भी वो चू जाता है नीचे आ जाता है पानी, सारा हॉल ऊपर काला हो गया। लेकिन इसने देखो ऐसा नक्शा पास किया है महाराज, एक बूंद पानी की जा नहीं सकती अंदर। और बोलो यदि नाक का छेद ऊपर की तरफ बना दिया होता तो क्या होता फिर है? भागवत में दशम स्कंद में जो गर्भ स्तुति है, वो गर्भ स्तुति में एक श्लोक आता है, 27 नंबर का श्लोक है दशम स्कंद के दूसरे अध्याय का, वहां पे लिखा है पंचविदा, एक आय न हुआ पूरा श्लोक नहीं सुनाता हूं, पंचविदा 5 रडार भगवान ने लगाए हैं, 5 रडार। असली में संस्कृत में आप लोग पढ़े लिखे हो थोड़ी बहुत, विद ज्ञाने धातु है, 5 रडार लगाए, एक रडार ये है। जब घर में तड़का लगता है तो मालूम पड़ता है देखो कैसा लग क्या बन रहा है आज, कोई सूचना देता है तो पता लगता है क्या हो रहा है, देख लीजिए ये क्या, यही रडार हैं। लेकिन ये रडार जितने तुम्हारे हैं ये विषयों को पकड़ते हैं, विषयी को नहीं पकड़ते, ये प्रकृति के सहयोगी हैं। तो प्रकृति को पकड़ने वाले रडार परमात्मा की प्राप्ति में तुम्हारे सहयोगी कैसे बने, इसके लिए श्री कृष्ण ने उपाय बताया। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः बसे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इन इंद्रियों का यदि आप उपयोग करोगे तो ये सृष्टि में उलझ जाएंगी, और इन इंद्रियों का यदि आप संयम करोगे तो ये सृष्टा के साथ में एक हो जाएंगी। उसी का नाम क्या है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा मैंने क्या है, तदा दृष्टु, तब दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान होता है, कब तदा मैंने कब, चित्त वृत्ति निरोध काले, चित्त वृत्तियों का उपयोग करते हैं तो सृष्टि के साथ में एक हो जाता है, और जब चित्त वृत्तियों को रोक लेते हैं उस समय दृष्टा के साथ में एकता हो जाती है। तो इंद्रियों का बाहर की तरफ उपयोग किया तो सृष्टि के साथ में जुड़ गए, और इंद्रियों का संयम किया तो सृष्टा के साथ में जुड़ गए। बस पढ़ना कभी योग दर्शन, चित्तवृत्ति निरोध काले दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। भगवान पतंजलि लिखते हैं कि जब इनको रोक लेते हो तो जो सृष्टि का अनुभव करने वाले हैं वही आपको सृष्टा का भी अनुभव कराते हैं। यदि ये इंद्रियां बाहर बहिर्मुख होकर के आपके जीवन के लिए अभिशाप हैं तो अंदर की तरफ होकर के ये इंद्रियां आपके लिए अमिट वरदान देने वाली सामर्थ्य इनके अंदर विद्यमान है। अब श्रुति ने एक बात बता दी है आपको कि बाहर की तरफ वाली बात जो है ना, थोड़ा सा ये क्यों ऐसा किया, क्यों किया, इसकी एक बहुत लंबी कहानी है, वो कहानी आपको कभी मैं दूसरे दिन सुनाऊंगा, या अभी सूत्र थोड़ा कर लेता हूं मैं आपको। यत्र अज्ञानात् भवेत् द्वैतम् इतरस्तत्र पश्यति आत्मत्वेन यदा सर्वम् न इतरस्तत्र पश्यति। यत्र अज्ञानात् भवेत् द्वैतम्, अज्ञानात् भवेद्वैतम्। ये चतुश्लोकी भागवत पढ़ी होगी आपने। ब्रह्मा जी को भगवान उपदेश देते हैं कि भाई, ब्रह्मा जी ने पूछा ये द्वैत है क्या, तो वहां एक दृष्टांत दिया, बड़ा अच्छा दृष्टांत है। दृष्टांत तो मूल में नहीं है लेकिन दृष्टांत देते, जैसे एक लाइट जलाओ आप लाइट, और फिर आप आंख को दबाओ ऐसा, तो कितनी नजर आती हैं? दो। तो वो दो हैं तब दो नजर आती हैं कि एक है तब दो नजर आती हैं? आप हटाओ उंगली वहां पे, वो दूसरा कहां चला जाता है? था ही नहीं। और जो था नहीं उसको बड़े प्रेम से आप देख रहे थे, लेकिन जो होता नहीं है कभी कभी उसके प्रति बुद्धि इतनी गहन हो जाती है, इतनी तकड़ी हो जाती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी है, अनादि अनादि है। यहां तक कि कभी आप लोग गीता के 15वें अध्याय का पाठ करते हैं उसमें एक श्लोक आता है, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढमूल, ना इसका आदि है और ना इसका। अच्छा, ये किसके बारे में कह रहे हैं? परमात्मा के बारे में कह रहे हैं कि संसार के बारे में कह रहे हैं? है? तो उसका आदि भी नहीं और अंत भी नहीं है, ऐसा क्यों बोल दिया? ये तो परमात्मा है, संसार तो अनादि और शांत है, लेकिन वहां लिखा है नान्तो न चादि। नहीं नहीं, वहां शांत नहीं लिखा है, न चांत न अंत है न आदि है। ये इसलिए लिखा है, जरा समझना बात को, कभी हमने आपको दृष्टांत देके समझाया होगा। गला खराब है इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं, इसलिए रोज गला खराब हो तो ठीक है, ऐसा मेरे को लगा भी। स्वभाव के विपरीत चलना पड़ता है। जैसे ढाई हाथ की रस्सी हो, अच्छा ढाई हाथ की रस्सी में सांप कितने हाथ का दिखेगा? हाँ, तो ये परमात्मा का न आदि है न अंत है, इसलिए संसार भी उतना ही दिखाई देगा, क्योंकि जितना बड़ा अधिष्ठान होगा उतना ही बड़ा अध्यस्त दिखाई देगा। आप बोलो अध्यस्त कितना बड़ा दिखेगा? इसलिए लोग इसको समझ नहीं पाते। इसका कारण ही केवल इतना है, क्योंकि जितना बड़ा अधिष्ठान है अध्यस्त उतना ही। लेकिन आगे भगवान ने एक बात बता दी, क्या? न च प्रतिष्ठा, है नहीं। जैसे रस्सी में, ढाई हाथ की रस्सी में ढाई हाथ का सांप दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं। लेकिन उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन जितना बड़ा अधिष्ठान है उतना ही बड़ा अध्यस्त है। तो तब बाद में वो अधिष्ठान स्वरूप ही हो जाता है। इसलिए भागवत में ब्रह्मा जी को भगवान समझा रहे हैं, न तुम ब्रह्मा जी हो न हम भगवान हैं। टाइम पास हो रहा है, वहां का श्लोक सुन लो, क्या बड़ा सुंदर श्लोक है, क्या श्लोक, ये चतुश्लोकी भागवत का है। रीते अर्थम प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, रीते अर्थम, अर्थ के बिना अर्थ की प्रतीति हो रही है। रीते मैंने बिना, अर्थम अर्थ के बिना अर्थ की प्रतीति हो रही है, भगवान ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं। जैसे आपको बताया वो आपने आंख दबाई और दो दिखाए, तो अर्थ दो के बिना दो दिख रहे हैं। यदि दो होए तब आपको दो दिखें तो बात समझ में आती है। रिते अर्थम प्रतीयेत, और न प्रतीयेत चात्मनि, अर्थ हुए बगैर अर्थ की प्रतीति होती है और जो वास्तविक में आत्मा है वो प्रतीत नहीं होती। न प्रतीयेत चात्मनि, आत्मा की प्रतीति नहीं होती, लेकिन जो अर्थ नहीं है, वेदांत में शर्त यही है, अधिष्ठान का कभी अभाव नहीं होता, अधिष्ठान का अज्ञान होता है। देखो, रस्सी नहीं होगी तब आपको कभी सांप नहीं दिख सकता, लेकिन रस्सी होगी तभी सांप दिखेगा, लेकिन आपको रस्सी नहीं दिखनी चाहिए, ये शर्त है। क्या वो भागवत अभी मैं कर रहा था कहीं पे, फिर उस श्लोक चतुश्लोकी भागवत, फिर मैंने थोड़ा श्रीधरी टीका निकाली, थोड़ा देखने का प्रयत्न किया क्या लिखा है वास्तविक में। सुबह कभी कभी संयोग ऐसा, सुबह स्वामी अखंडन जी भी यही कह रहे थे कि भागवत में जितना वेदांत भागवत में है उतना ही उपनिषदों में है, तो इन इन जगहों पे जब देखते हैं तब अपने को मालूम पड़ता है। अपने लोग बारीकी से नहीं देखते ना, खाली भागवत में ढोल गाने बजाने सब कर करके सुखदेव जी का स्वरूप ही बिगाड़ दिया। कल मेरे को कोई बोल रहा था, अभी नीचे बैठे थे, बोले महाराज कुछ बात चल रही थी, अभिनव सुखदेव जी। मैंने कहा ये अभिनव का अर्थ क्या, मैंने कहा अभिनव का अर्थ होता है अभी अभी पैदा हुआ हो तो अभी अभी पैदा जो होगा उसको अभी अभी जैसा ही होगा वो, और क्या। ऐसी देखो कभी कभी ऐसी बात हो जाती है। चलो अब क्या हो गया, यत्र अज्ञानात् भवेत्। अब वो जो एक के दो दिख रहे हैं वो अज्ञान के कारण दिख रहे हैं, है ना। अच्छा फिर क्या हो जाता है, इतरा इतरम पश्यति, फिर दो हो गया, वो दो हो गया ना। अच्छा आत्मत्व, जब वो आत्मत्व नहीं देखेगा तब उस समय उसको इतर मैंने दूसरा नहीं दिखाई देगा। इसके लिए साधन क्या बता दिया, तो साधन दो बताए इन्होंने। देखो असत्वापादक की निवृत्ति के लिए श्रवण, पहला था क्या, असत्वापादक की निवृत्ति के लिए श्रवण, लेकिन श्रवण के लिए उन्होंने ये कहा तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत समितपान। मैंने उन्होंने कहा कि शास्त्र के भाष्यकार ने तो ऐसा लिखा है 12वें अध्याय में गीता के, शास्त्राचार्य उपदेश जनित शुद्ध संस्कृत मन, जो शास्त्र के अच्छी सम्यक ज्ञाता है उन्हीं के द्वारा यदि व्यक्ति श्रवण करेगा तभी असत्वापादक की निवृत्ति होगी। अब जितने आप लोग आते हो लगभग सबके असत्वापादक की निवृत्ति तो है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। असत्वापादक मैंने परमात्मा नहीं है, इसका नाम है असत्वापादक। अब ये तो आपके मन में पक्का हो गया कि भगवान है, भगवान है, लेकिन अस्तित्व का बोध होने पर भी जब मिलता नहीं है तब संशय होने लगता है। कोई कभी कभी ना आपको ये पता है कि ये घड़ी मेरे घर में ही है, लेकिन आपने अपने हाथ से ऐसी जगह पे रख दी है कि आपको पता नहीं चल रहा है, तो आपको जब दो तीन घंटा ढूंढते ढूंढते हो जाते हैं ना, तो आपको संशय होने लगता है कि है भी कि नहीं भी है। तो असत्वापादक की निवृत्ति हो गई उसके बाद संशय रहता है, तो संशय की निवृत्ति के लिए फिर क्या करना पड़ता है, मंतव्य श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्य मंतव्यश्च उपपत्ति भी, ध्यान रखना इस बात का, उपपत्ति माने युक्ति। शास्त्र का उपयोग करो और युक्तियों से विचार करो, समझाई बात की नहीं, और फिर अनुभूति के लिए क्या करे, तो श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्य मंतव्यश्च उपपत्ति भी असत्वापादक और संशय, और फिर मंतव्यश्च मत्वा च सततम ध्यायेत। सततम ध्यायेत का अर्थ हो गया निधि ध्यासन। महाराज ये आत्मा का गौरव बहुत बड़ा गौरव है, विष्णु सहस्र नाम में लिखा है अमानी मानदो मान्य। हमने देखा है महाराज बड़े बड़े विद्वान जिनके चरणों को लोग धोकर के पीते हैं, शरीर से हवा निकल जाती है तो लोग बोलते हैं जल्दी करो उठाओ अब। ये मान सम्मान किसका है? विष्णु सहस्र नाम पढ़ते हो? अमानी मानदो, उसकी वजह से इन जड़ शरीरों का मान है। और निकल गया बोले फटाफट उठाओ। पेटी में बंद किया और गंगा जी में, और फिर देखो प्रकृति ने भूख बनाई है। अरे बनारस कभी गए तुम? बनारस में एक जगह है कमंडकंड का घाट, 24 घंटे मुर्दे जलते हैं, तुमको मालूम नहीं पूरा अभी तक वहां का। वहां जब मुर्दे ले जाते हैं ना तो कचौड़ी गली में कचौड़ी का ऑर्डर देके जाते हैं वहां, है जी नहीं? सही बात। वो ऑर्डर दे क्योंकि तुरंत मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रकृति अपना भूख का प्रभाव दिखाती है। श्री कृष्ण ने महाभारत में, तुम लोग तो बहुत भाग्यवान हो महाराज, दिन भर बकरी की तरह चढ़ते रहते हो, हैं? वहां भगवान ने भूख का महत्व बताया महाराज। जब महाभारत के युद्ध में गंधारी कृष्ण को देखती है बड़ी, अच्छा देखो ये आश्चर्य की बात है, गांधारी ने ही बोला है तुमेव माता च पिता, तुमेव गांधारी ने बोला है भगवान को। इतना भगवान का महात्म्य समझती है लेकिन इतनी घृणा उसको कृष्ण से है। क्या जीवन हमारा बहुत विलक्षण है, जिससे हम जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं कहीं उसके प्रति घृणा हो सकती है, जिसके महात्म्य का बोध है उसके प्रति भी अनास्था। यही मानव जीवन है, अपार श्रद्धा है, कृष्ण की सामर्थ्य का बोध है। जब दुर्योधन अंदर प्रवेश करता है केले के पत्ते लपेट करके, तो गांधारी ने देखा, तो गांधारी ने क्रोध में, आप महाभारत देखना थोड़ा, गांधारी ने पूछा अरे दुष्ट तेरे को कौन दुष्ट लाया यहां? बोला वो लाया, वो दरवाजे पे खड़े थे, कौन? कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान को श्राप देती है, जा तेरा वंश भी ऐसे ही खत्म हो जाए। लेकिन कृष्ण तो मुस्कुरा दिए, क्योंकि आदमी वही बोल सकता है जो होने वाला है। प्रकृति ही तो बुलवाती है, श्राप क्या होता है? सब प्रभाव को जानते हुए, स्वभाव को जानते हुए, लेकिन अपने दिल की बात कैसे कर जाते? तो भूख का प्रभाव है महाराज। वहां जाते हैं और मुर्दे जलाने के लिए, तो आते समय बोलते कितने आदमी आए हैं मुर्दे को फूंकने के लिए? 50। तो 50 आदमी के कचौड़ी का ऑर्डर देके जाते हैं, और तब उसमें थोड़ा वो नमक डालना भूल जाए कचौड़ी वाला, वो जो साग और कचौड़ी बनाए, फिर देखो झगड़ा वहां शुरू हो जाता है। भूख है महाराज। कृष्ण ने कहा गीता पढ़ो प्रेम से, जीवनम सर्वभूतेषु, अरे जीवन मैं हूं। जहां से जीवन अलविदा हो गया उसके बारे में क्यों सोचते हो? उसने तो कोई नया कपड़ा धारण कर लिया, वो तो किसी और को अपना मां बाप मानता है। यही तो परमात्मा की लीला है। इसलिए असत्वापादक की निवृत्ति हो गई, फिर अभाना पादक की निवृत्ति हो जाएगी, और फिर आपको उसका पता लगता है। एक श्लोक कहते इतने तो एक एक ही श्लोक होता मेरे को ऐसा लगता है अभी। अच्छा आगे क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर है श्लोक है, लेकिन प्रेम अच्छा श्लोक है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन विजानता न वैतस्य भवेत् मोहो न शोको अद्वितीयतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन विजानतः न वै तस्य भवेत् मोहो। उस आदमी के अंदर मोह नहीं होता। मोह समझते हो कैसे लेते हैं? मोह निशा सब सोहन हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। इसका नाम है मोह निशा। संस्कृत में निशा शब्द जो है ना, नस अदर्शने धातु से बनता है। नस अदर्शने से मोह ऐसा है कि आदमी को कुछ देखने नहीं देता, देखने नहीं देता। और शोक क्या है? तो शोक जो है प्रिय के वियोग का नाम ही शोक है। ज्ञानी को शोक नहीं होता। यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन विजानता, जो आत्मा के रूप में जानता है। तो मैं तो हमेशा आपको एक दृष्टांत देता हूं, यहां पर भी वही दृष्टांत लागू हो रहा है। मैं कभी आपको बताया कि आपने बढ़िया माल मसाला बनाया खाने के लिए, फटाफट खाने लग गए और आपके दांत के नीचे आपकी जीभ आ गई थोड़ी सी और कट गई। कभी कटेगी नहीं, कटी खून निकल जाए, कभी हुआ ऐसा? तो दांत तोड़ते हो अपना? क्यों नहीं तोड़ते भाई? अपना नहीं तब तो तुम्हारी पत्नी काटे तो उसको मारोगे नहीं मारोगे? वो भी तो अपनी है। अपना नहीं, यहां क्या बोल रहा है जरा समझो बात। आत्मत्वेन पश्यति, क्योंकि जीव के कटने से जिसको दुख होता है, दांत को टूटने से भी उसी को दुख होगा। इसका नाम है आत्मत्वेन, क्योंकि जीव के कटने से कौन दुखी? मैं। दांत के टूटने से कौन दुखी? हां, इसका नाम है आत्मत्वेन। वो दोनों उपाधियां अलग अलग हैं, लेकिन उपाधियों के अलग अलग होने पर भी उपहित एक है। तो वही बता रहे हैं भाष्यकार, ये सर्वाणि सभी भूतों में जो उस आत्म तत्व को देखता है, तो एक भूत यदि दूसरे भूत को कष्ट पहुंचाता है तो उसके प्रति चित्त में कष्ट पहुंचाने वाली भावना नहीं होती। ये तभी संभव। अपना अपना नहीं बोलना भूल से भी अभी दोबारा कभी है। हाँ, वो अपनत्व तो जो, क्योंकि तुमको मालूम है कि जीभ के कटने से कितना दुखी हुआ था, और तुमको मालूम है दांत तेजी तोड़ेंगे तो और ज्यादा दुख होगा फिर तो। इसलिए जो ऐसा व्यक्ति है जो उस आत्म तत्व को सब जगह देखता है, उसके अंदर दो चीजें नहीं होती, एक तो मोह नहीं होता और एक शोक नहीं होता। मोह शब्द ऐसे जो है ना, एक तो वैचित्य होता है। वैचित्य, वैचित्य बोलते हैं जो चित्त के चिंतन करने की सामर्थ्य को खत्म कर देता है, वो मोह वैचित्य। उसके चित्त के अंदर चिंतन करने की सामर्थ्य हमेशा रहती है। इसलिए हमने कभी आपको बताया होगा कि श्रीमद् भागवतकार सुखदेव जी महाराज वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक पल के लिए भी आत्मविस्मृति नहीं होती। यहां तक कि उन्होंने बलराम जी को भी अलग कर दिया। ये बहुत बारीकी से जो भागवत पढ़ेगा उसी को पता लगेगा, वो और कथाकारों को तो लग ही नहीं सकता। बहुत बारीकी से यदि चिंतन करेगा उसको पता लगेगा। उन्होंने प्रलंबासुर के वध में वहां बताया कि वो जो बलराम जी महाराज थोड़ी देर के लिए डर जाते हैं, फिर वो शब्द का प्रयोग करते हैं वहां पे, अथा गता आत्मस्मृति, फिर उनको दो सेकंड के बाद आत्मस्मृति आ गई। किसको? हाँ, बलराम जी को। फिर वो निर्भय हो गए। अब आप बताओ, हम लोग तो हमेशा आत्मविस्मृति में पड़े हुए हैं, हम निर्भय कैसे हो सकते हैं? 24 घंटे भयभीत हैं। इसलिए निर्भय होने का एक ही उपाय है, तो घड़ी भी बोलती है चुप हो जाओगी। आगे की चर्चा कल करेंगे।